तो आप सब भक्तों को हम स्वागत करते हैं आज के इस पावन अवसर पर। आज जो है एक तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है और उसके साथ साथ पाँच चार दिन का जो ये समय रहेगा ये बलराम जी का विशेष गुणगान के लिए। और आज का जो दिन है दो संतों के जो हैं तिरोभाव दिवस भी हैं, तो इन संतों के विषय में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। पहले जो संत हैं परमाचार्य, उनका नाम है श्री रूप गोस्वामी जी, और वैष्णव समाज के लिए रूप गोस्वामी जी जो हैं एक बहुत ही अहम स्थान रखते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, चैतन्य महाप्रभु के जो हैं ये काफ़ी अंतरंग पार्षद थे और उनकी आज्ञा के अनुसार उन्होंने प्रचार कार्य भी किया, ग्रंथों को भी लिखा और वृंदावन में उन सब कृष्ण की लीला स्थलियों को भी ढूंढा जिन जगहों पर आज आप जाकर दर्शन करते हैं। तो रूप गोस्वामी जी जो हैं उनके विषय में प्रयास करते हैं थोड़ा सा समाधि मुख से पढ़ने का, सॉरी वैष्ण ठीक है वैष्णव चरित्र में से। सन 1517 में श्री रूप गोस्वामी एवं उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चार आदेशों का पालन करने हेतु वृंदावन आए। तो ये चार इंस्ट्रक्शन से शुरू है कि क्या क्या उन्होंने किया। चैतन्य महाप्रभु की पहली इंस्ट्रक्शन थी श्री कृष्ण की लुप्त लीला स्थलियों की खोज, दूसरा मूर्ति स्थापना कर पूजा आरंभ करना, तीसरा भक्ति शास्त्र की रचना करना, चौथा भक्ति योग के नियमों का प्रचार। तो ये चार मूल शिक्षाएं जो इंस्ट्रक्शन थी उनको दी गई थी। मात्र कोपिन व कंधा धारण किए श्री रूप गोस्वामी ने वृंदावन धाम में राधा गोविंद की सरस प्रेम लीलाओं के श्रवण कीर्तन एवं लेखन में अंतर्लीन रहते हुए एक भिक्षु का जीवन व्यतीत किया। उनके आचार व्यवहार का अधिक विवरण सनातन गोस्वामी के जीवन चरित्र में दिया गया है। श्री रूप गोस्वामी जी ने व्यवहारिक परंतु गूढ़ ग्रंथों की रचना की। उन्होंने संपूर्ण गौड़ीय संप्रदाय के प्रिय अर्च विग्रह श्री श्री राधा गोविंद देव जी की स्थापना की। व्यापक वैदिक अनुसंधानों के द्वारा श्री रूप गोस्वामी जी ने सिद्ध कर दिया कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं सर्वोत्तम दर्शन तथा धर्म की पूर्णता प्रस्तुत करती है। गौड़ीय वैष्णव रूप रूपानुगर अर्थात श्री रूप गोस्वामी के अनुयायियों के नाम से जाने जाते हैं। प्रत्येक रागानुगा भक्त श्री रूप गोस्वामी के पद कमलों के दासों का दास बनने की आकांक्षा करता है। श्री नौतम दास ठाकुर जी गाते हैं, श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद सही मोर भजन पूजन। श्री रूप मंजरी व्रज में श्री राधा की दासी के रूप में रूप गोस्वामी का नित्य स्वरूप रूप मंजरी के रूप में है के नाम से है कि चरण कमल में ही मेरी एकमात्र की ही संपत्ति है, उनकी सेवा ही मेरा भजन एवं पूजन है। रस तत्व के विज्ञान के विषय में लिखने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को नियुक्त किया। चैतन्य चंद्रोदय में श्री कवि कर्णपूर्ण कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी शुद्ध प्रेम भक्ति का मूर्तिमान रूप है। श्री चैतन्य ने उन्हें अपना प्रेम व भक्ति समझाने का तथा विश्व भर में उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से अभिव्यक्त की। अपनी वरण्य भक्तिमय कृतियां भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नीलमणि ललित माधव तथा अन्य रचनाओं के कारण उन्हें भक्ति रसाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति साम्राज्य के से संबंधित समस्त वैदिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत किया गया। इसमें सब विस्तार व्याख्या दी गई है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर श्री वृंदावन में राधा गोविंद की प्रेमा भक्ति अर्थात उनके प्रति विशुद्ध अनन्य प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि राधा और कृष्ण के प्रेम संबंधों को समझने के लिए अत्यंत उत्कंठा भाव से श्री रूप गोस्वामी के चरणारविंदों की सेवा करनी चाहिए। सेवा का अभिप्राय है श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का श्रवण, कीर्तन तथा कठोरता से पालन करना। सेवा का अर्थ यह भी है श्री रूप गोस्वामी अर्थात श्री मंजरी रूप मंजरी से प्रार्थना करना, करुण पुकार करना, उनका ध्यान करना तथा अपना संपूर्ण जीवन उनके चरण सरोजों में अर्पित कर देना। साधन दीपिका के कथनानुसार भक्ति पथ के पथिकों को सदैव श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रदत्त प्रेम भक्ति के सिद्धांतों से जुड़े रहना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी की कृपा द्वारा व्यक्ति श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के दिव्य सत्य को समझ सकता है। अधोलिखित उद्धरण श्री रूप गोस्वामी के दिव्य लेखन की अविश्वसनीय शक्ति दर्शाता है। जब श्री रूप गोस्वामी तेर कदम में अपनी भजन कुटीर में बैठकर उन विप्रलंब भावों के विषय में लिखते थे जो श्री राधा एवं कृष्ण एक दूसरे के लिए अनुभव करते थे, तब उस कदम वृक्ष के पत्ते गिरने लगते थे, मानो किसी व्यथित व्यक्ति के नेत्रों से नीर अर्थात आंसू बह रहे हों। और जब श्री रूप राधा कृष्ण के प्रेम मिलन के विषय में लिखते थे, तब उस उत्फुल्लित कदम्ब वृक्ष में तुरंत नई नई कोंपले तथा पुष्प खिलने लगते थे। श्री रूप गोस्वामी के सदृश शुद्ध वैष्णव की कृपा द्वारा यह कदम्ब वृक्ष उस अंतरंग एवं गुह्य विषय वस्तु को समझ तथा उसके मर्म को ग्रहण कर पाया जो हमारी बोध गम्यता से परे है। श्री रूप गोस्वामी के वृंदावन में राधा गोविंद के अर्च विग्रह स्थापित किए उन्होंने। भक्ति रत्नाकर में रूप गोस्वामी के प्रिय विग्रह गोविंद देव जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए श्रीनिवास आचार्य का एक गीत उद्धृत है। श्री गोविंद के अनुपम लालित्य को निरख कर श्री राधिका अपनी सखियों के सम्मुख उसका वर्णन करने लगती है। किसने उस सोम सममुख का सृजन किया है और किसने वे नलिनयन रचे हैं, मेरा हृदय ही जानता है कि उन्हें देखकर मेरी क्या दशा होती है। किसने मणियों को सतर्कता पूर्वक उत्कीर्ण कर उनके कुंडलों का आकार दिया है, मेरा मन उनमें निमग्न हो गया है। स्वर्ण वलय में लटकता उनका नासिका मौक्तिक ऐसा प्रतीत होता है मानो श्यामल मेघों की ओट से चहुदिश मेघ ज्योति से घिरा एक शुभ्रांशु सम शुभ्र कुसुम मुस्कुरा रहा हो। उनका ललाट चंदन तिलक तथा मंजुल मनमोहक अल्पनाओं से अलंकृत है। वे मेरे हृदय में अलौकिक हैं, तथापि उनके मोहन मुख को अपनी मन संतुष्टि के अनुरूप निखरने में असमर्थ होने के कारण मेरा मन व्यथित हो रहा है। यदि विधाता ने मुझे शक्ति दी होती तो मैं निरंतर उनकी श्रुति मधुर वाणी का रस लेती। उनकी भुजाएं गजशुंड से भी अधिक बलिष्ठ हैं, मेरा यौवनपूर्ण अंग प्रत्यंग उनकी अंगुलियों के स्पर्श हेतु लालायित है। उनकी चारु चेतन चलन शैली गज गति को भी परास्त करती है, वे सौंदर्य सिंधु हैं। संप्रति श्री रूप गोस्वामी के मूल अर्च विग्रह राधा गोविंद जी जयपुर राजस्थान में नित्य प्रति अपनी असीम सुषमा विस्तृत कर रहे हैं। अनुदिन 10,000 भक्त उनकी मंगल आरती में भाग लेने के लिए दौड़े आते हैं। गोविंद देव जी की एक प्रतिमा मूर्ति नवीन गोविंद देव मंदिर में विराजमान है जो वृंदावन में वास्तुशिल्प की उस ऐतिहासिक उत्कृष्ट कलाकृति के पीछे स्थित है जहाँ पूर्व काल में राधा गोविंद देव जी की रचना होती थी। श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी जी की राधा गोविंद देव जी की अर्च विग्रह दर्शाता है कि राधा एवं कृष्ण की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए। राधा गोविंद देव जी हमारी सेवा अंगीकार करते हैं और भक्ति मार्ग पर समर्पण में वृद्धि करने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। एक शिक्षा गुरु के सदृश कार्य करते हुए श्री गोविंद देव जी हमें निर्देश देते हैं अथवा अपनी सेवा में का अवसर प्रदान करते हैं। कुछ अधिकारी जन का व्यक्तित्व है कि 1564 में श्री सनातन गोस्वामी जी के तिरुधान के ठीक 27 दिन उपरांत श्री रूप गोस्वामी राधा गोविंद की नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। श्री रूप गोस्वामी की समाधि एवं भजन कुटीर राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण के सेवा कुंज में है। रूप गोस्वामी जी का कुछ शब्दों में चरित्र लिखने का प्रयास किया गया है, जबकि रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी ये दोनों भाई हम लोग पढ़ते हैं कि मुस्लिम सरकार में बहुत ऊंचे पदों पर थे, एक फाइनेंस मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर पद पर, और जब उन्हें पता चला कि चैतन्य महाप्रभु अब जो है प्रकट होकर अपनी लय कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने उन पदों का त्याग किया और चैतन्य महाप्रभु की शरण में चले गए। और क्योंकि वो रूप गोस्वामी जी वास्तव में प्रकट लीला में तो चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी इत्यादि ये सभी लोग पुरुष देह में दिखाई देते हैं, जबकि चैतन्य महाप्रभु हैं राधा और कृष्ण का युगल अवतार, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। अर्थात आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन धाम में श्री कृष्ण और जो राधा हैं, उन्होंने जब इकट्ठे होकर अवतार लिया तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में लिया, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पार्षद और श्रीमती राधा रानी की अंतरंग सखियां मंजरियां भी, राधा कृष्ण जब वो नीचे आए तो उन्होंने भी अपना विस्तार किया, वो भी नीचे आ गए। तो श्रीमती राधा रानी की जो मुख्य सखियां हैं, जैसे 8 गोपियों के हम विषय में चर्चा में जानते हैं, ललिता, विशाखा इत्यादि, तो जो सभी जो ये 8 प्रमुख गोपियां हैं, इन प्रमुख गोपियों के अंडर में हजारों लाखों जो हैं सेविकाएं हैं, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा की सेवा में हमेशा रत रहती हैं। जैव धर्म में युधेश्वरियों के नाम से इनको पुकारा जाता है, और उनके ग्रुप बताए गए हैं कि कितने बड़े बड़े ग्रुप हैं, कितनी कितनी गोपियां, कितने कितने मंजरियां जो हैं एक एक ग्रुप में रहती हैं, और उनके लीडर्स कितने सारे हैं, तो जितने सारे लीडर्स हैं उतनी सारी गोपियां। तो ललिता जी के जो हैं अंडर में जो श्रीमती राधा रानी की प्रमुख मंजरी है वो है श्री रूप मंजरी, यहाँ रूप गोस्वामी जी के नाम से जानते हैं, उधर रूप मंजरी के नाम से जानते हैं। और ये रूप मंजरी के अंतर्गत असंख्य कह सकते हैं बहुत अधिक मंजरियां हैं, ये सब की उम्र जो है आध्यात्मिक जगत में 13-14 साल की जो है श्रीमती राधा रानी की मेड सर्वेंट हैं, जो श्रीमती राधा रानी को सर्व करती हैं। तो इस प्रकार जितनी भी गोपियां हैं, प्रमुख गोपियां, उनके सब के अंडर में इस प्रकार की मंजरियां और सेविकाएं हैं, जो भगवान श्री राधा और कृष्ण की लीलाओं को जो है और सुंदर बनाने के लिए, उनमें सेवा करने के लिए उनका सहयोग देती हैं। और मंजरियों में जो है ये भाव नहीं रहता कि वो राधा और कृष्ण की लीलाओं के मध्य में रहकर या कृष्ण के साथ जो है वो भी रासलीला करें या कृष्ण से प्रेम व्यवहार करें, जैसे कि माधुर्य रस में हम चर्चा करते हैं कि माधुर्य रस में हर व्यक्ति चाहता है कि कृष्ण मेरे जो है प्रेमी हों या मैं उनकी प्रेमिका हूँ, उनका आलिंगन करें, उनके साथ रास करें। लेकिन मंजरियों में कृष्ण के साथ आनंद लेने का या रास में नाचने का, इस प्रकार का आनंद का एक लेश मात्र भी नहीं होता। ये जो मंजरियां हैं, जो रूप गोस्वामी जी के अंतर्गत हैं, ये सभी मंजरियां केवल श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण के संग में देखकर राधा रानी को प्राप्त होने वाले आनंद से अपनी पूर्ति, अपने आनंद की पूर्ति करती है। जब कृष्ण ने इस भौतिक जगत में अवतार लिया तो उसका एक कारण यह भी था कि वो श्रीमती राधा रानी के आनंद से वशीभूत थे कि जो मेरा आनंद है, मैं रसिक शेखर हूं, मुझसे ही सब आनंद लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन श्रीमती राधा रानी को मेरे रूप माधुर्य से, मेरे नाम माधुर्य से इतना आनंद प्राप्त होता है कि वो 1 करोड़ गुना बढ़ जाता है, 1 करोड़ गुना बढ़ जाता है। और वो आनंद की अनुभूति कैसी होती होगी जैसे श्रीमती राधा रानी को होती है। तो ये जो राधा रानी जी हैं, इनको जिस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, बताते हैं जो मंजरियां हैं जो श्रीमती राधा रानी की आनंद से आनंद लेती हैं, तो बताते हैं कि जो मंजरियां हैं राधा रानी का आनंद को देख, उनका जो आनंद है वो भी करोड़ों गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए जिनको पहले करोड़ों गुना आनंद प्राप्त हो रहा है तो कृष्ण के आलिंगन रास में तो उनका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं रहेगा। मंजरियों के लिए तो कृष्ण के साथ आनंद लेने का मतलब ये है कि बर्फी खाने के बाद कोई बोले कि ये लो मौसमी खा लो, है ना, कितनी मीठी है बताओ, तो उनके लिए इस प्रकार है। तो इस प्रकार जो ये रूप मंजरी हैं और ये परम सखी हैं, परम सेविका हैं मंजरियों में, इसलिए बता रहे हैं कि इनसे प्रार्थना करनी चाहिए भक्तों को कि हम लोग उनकी सेवा में रत हो सकें। और एक भक्त और हैं गौरीदास पंडित जी, तो इनके विषय में बताया गया, भगवत प्रेम में अत्यंत उन्नत भक्ति के प्रति गौरीदास पंडित में इस प्रकार के प्रेम को प्राप्त तथा वितरित करने की महान क्षमता थी। चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु को अपने प्राणनाथ बनाकर गौरीदास पंडित ने नित्यानंद प्रभु की सेवा में सर्वस्व त्याग दिया। संन्यास लेने से पहले चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु अंबिका कालना में गौरीदास पंडित के पास गए। उनके आसन वियोग से भयभीत होकर गौरीदास पंडित रो रोकर प्रभु से अधिक समय तक ठहरने की याचना की। महाप्रभु ने अपने प्रिय दास को सांत्वना देने के लिए नीम की लकड़ी से निर्मित गौर निताय अर्थात अपने ही स्वरूप के मानव काय अर्च विग्रह बना दिए, अपने ही सहस्य स्वरूप गौर निताय के। गौरीदास मेरा मूर्ति रूप मेरे ही समान है, गौरांग महाप्रभु ने कहा, हम तुम्हारी सेवा स्वीकार करने हेतु सदैव तुम्हारे ग्रह में वास करेंगे। तो एक भक्त हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं गौरीदास प्रभु, ये चाहते नहीं थे कि चैतन्य महाप्रभु और उनके भाई बलराम नित्यानंद प्रभु मेरे घर से वापस जाएं। और वो जब जाने की बात करने लगे तो खूब रोने लगे। तब महाप्रभु ने क्या किया, अपने दोनों के विग्रह बनाकर उनको दिए, कभी ये लीजिए, मैं इनसे अभिन्न हूं, इनकी सेवा करो बराबरी। तो कई बार कई इस प्रकार के धर्मों में कहा जाता है विग्रहों की पूजा को लेकर ये नहीं करनी चाहिए। तो हमारे ग्रंथ और हमारे शास्त्र भक्तों की उन रियलाइजेशन से, भगवान श्री कृष्ण की विग्रहों के रूप में उन लीलाओं से भरे हुए हैं जहाँ पर विग्रहों ने भक्तों के साथ भावों का आदान प्रदान किया है, तो उसमें से भी ये करना है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे घर में ही वास करेंगे। तो गौरीदास पंडित ने अनेक अंतरंग विधियों द्वारा गौर निताय की पूजा की, यथा उनसे सुमधुर वचन बोलकर उनके निमित्त नाना प्रकार के सुस्वादु व्यंजन पकाकर उनसे शास्त्रों पर विचार विमर्श करके तथा दिन भर उनकी प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ण करके, वृद्ध एवं जर्जर हो जाने पर भी गौरीदास अपने पूज्य भगवान श्री गौर निताय की अविरत सेवा में संलग्न रहे। यद्यपि वे दरिद्र थे तथापि उन्होंने गौर निताय को बहुमूल्य अभिरूप आभूषणों द्वारा अलंकृत करना चाहा। उनके मन की बात समझकर गौर नित्यानंद ने स्वयं को विपुल विभूषणों द्वारा विभूषित कर लिया। मन में भाव था कि हम भगवान को सुंदर आभूषणों से जो है अलंकृत करें, और भगवान देख रहे कि इस मेरे भक्त का भाव है कि मुझे आभूषण तो भगवान ने खुद ही सुंदर आभूषणों से अपने को अलंकृत कर लीजिए। उनके सुललाम सोष्ठ को निहार कर गौरीदास चकित रह गए। उन्हें यह आभरण कहां से प्राप्त हुआ उन्होंने सोचा। श्री श्री गौरनिताय अपने शुद्ध भक्त गौरीदास पंडित के घर में प्राय ऐसी दिव्य लीलाएं संपन्न करते रहते थे। एक बार गौरीदास के प्रमुख शिष्य चैतन्य दास ने गंगा तट पर एक विराट संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया। कीर्तन से सम्मोहित होकर गौरीदास के अर्च विग्रह अपनी वेदी से कूदकर कीर्तन में नृत्य करते हुए भक्त गण में सम्मिलित हो गए। समझ पा रहे हैं कि कीर्तन हो रहा था, एक बार उनके भक्त कर रहे थे तो भगवान जैसे सामने हैं, ऐसे ही जो गौरनिताय जी के विग्रह थे कीर्तन सुनने के बाद उन्होंने क्या किया, वो ऊपर से कूद गए और नाचते कूदते हुए कीर्तन में सम्मिलित हो गए। हमें भी डर है कि कहीं हमारे भक्त लोग जब कीर्तन निकालते हैं तो मंदिर के विग्रह मानना चले जाएं। तो इस प्रकार जो है वो नृत्य कूदते करते हुए उसमें मिल गए। जब गौरीदास को ये पता चला कि अर्चविग्रह मंदिर में उपस्थित नहीं है, और वो छड़ी लेकर उनके पीछे भागे, किनके पीछे, गौर निताई जी के विग्रहों के पीछे भागे, उनको पकड़ने के लिए दौड़े। उन्हें क्रोधित देख गौर निताई अंतर्धान हो गए, उन्हें देखो भाई ये तो पिटाई होने वाली, तो एकदम गायब हो गए। तत्क्षण गौरीदास अचंभित रह गए जब उन्होंने गौर निताई को चैतन्य दास के हृदय में प्रविष्ट होते हुए देखा। मतलब अपने बचने के लिए पिटाई से उन्होंने हृदय चैतन्य जो थे सॉरी जो चैतन्य दास थे उनके हृदय में प्रकट हो गए उनके शिष्य के। तो गौरीदास ने अपने प्रिय शिष्य का आलिंगन किया, उसे अपने स्नेह सलिल से अभिषिक्त कर दिया और बोले, तुम अत्यंत भाग्यवान हो, आज से तुम्हारा नाम हृदय चैतन्य होगा, क्योंकि भगवान चैतन्य तुम्हारे हृदय में समाये हैं। तब से गौरीदास पंडित के मंदिर में गौर निताई के दर्शन वृंदावन के बांके बिहारी जी की भांति अनेक छोटे छोटे अंतराल में दिए जाते हैं। गौर निताई को वेदी से कूदने से रोकने के लिए पुजारी दर्शन की पूर्ण विधि में आवरण पट को खोलते हैं तथा त्वरित बंद कर देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जैसे बांके बिहारी मंदिर में दर्शन खोलते हैं और तुरंत बंद कर देते हैं, फिर खोलते हैं फिर बंद कर देते हैं, क्यों? तो पता चलता है कि एक बार एक भक्त ऐसे आए थे जिन्होंने भगवान से जो है प्रार्थना करी, उनको खूब निहारा और साथ में चलने की प्रार्थना की, साथ ही चल पड़े। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भाई कोई ज़्यादा जो है ज़्यादा देखे ना। आप वैसे तो भक्तों की आंखें भी कमज़ोर होती हैं, तो आंखें मिला नहीं पाते उतना, है ना। भगवान भक्तों के साथ चल पड़े, बताइए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि गौर निताई की जो पूजा होती है, विग्रह होती है उनकी, जो उसमें पर्दा लगा रखा आगे, आप देखेंगे दर्शन करेंगे तो तुरंत हटा ले जाते हैं, फिर बंद करते हैं फिर खोले जाते हैं। तो इस प्रकार कई जगह पर वेरी गुड। तो वृंदावन के धीर समीर कुंज में भजन करते हुए गौरीदास कृष्ण बलराम की नित्य गोचर लीला में प्रविष्ट हो गए। ब्रज में वे द्वादश गोपालों में से एक सुबल है। उनकी समाधि वृंदावन के धीर समीर में श्याम राय मंदिर परिसर के भीतर है। श्रील गौरीदास पंडित जी की, श्री रूप गोस्वामी महाराज की। तो ये दो आचार्य हमारे बहुत ही रसिक आचार्य रहे हैं, एक सुबल हैं और एक सुबल जो है भगवान श्री कृष्ण के काफी अंतरंग मित्र हैं। और क्योंकि हम आजकल बलराम कथा भी कर रहे हैं, तो कल प्रभु जी ने कुछ बताया होगा आपको, आज हम सोच रहे हैं कि बलराम जी के विषय में कुछ और चर्चा की जाए। तो भगवान बलराम जो हैं, वास्तव में अगर देखा जाए जितने भी प्रकार के अवतार होते हैं भगवान श्री कृष्ण से, जैसे पहला एक्सपेंशन बलराम जी का है और फिर बलराम जी से संकर्षण नारायण जो चतुर्व्यूह बनता है नृत्य प्रद्युम्न का, उसके बाद सेकंड चतुर्व्यूह संकर्षण का, उनसे आते हैं फिर महाविष्णु, फिर आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु और फिर आते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर शिरोदक्षाय विष्णु। और उसके बाद यही शिरोदक्षाय विष्णु इस भौतिक जगत में जब जब धर्म की हानि होती है तो अवतार लेकर आते हैं, परशुराम है ना, नरसिंह भगवान, वराह इत्यादि के रूप में। तो अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे अवतार कौन ले रहा है? सारे के सारे अवतार बलराम जी से आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तो एक बारी अपना विस्तार कर अपने लीलाओं में व्यस्त है, और बलराम जी का सारा काम देखना यह है सृष्टि में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसलिए जब कृष्ण लीला में एक बार तो भगवान श्री कृष्ण ही बलराम जी का खूब क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, और उस गुणगान में बोलते हैं कि आप ही सभी अवतारों के क्या हैं, कारण हैं, आप परम भगवान हैं और आप सभी अवतारों के कारण हैं। तो बिल्कुल सही बोला, क्योंकि विष्णु बनकर जितने अवतार भगवान लेते हैं, और ये विष्णु जो शिरोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, कारणोदक्षा विष्णु, नारायण प्रद्युम्न नृत्य संकर्षण, और संकर्षण से पीछे बलराम, तो सारे कुछ बलराम से ही तो आ रहे हैं। तो सारे का सारा जो इस सृष्टि का काम देखना है वो बलराम जी के ही हाथ में है। और जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, तो भगवान श्री कृष्ण भी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बलराम जी का स्रोत भी कौन है, कृष्ण ही है। तो ये दोनों भाई लीला करते हैं और बलराम जी जो हैं, जिस प्रकार कृष्ण अपनी लीलाओं में रत हैं, उसी प्रकार बलराम जी भी कृष्ण के साथ अपनी लीलाओं में रत हैं। लेकिन बलराम जी के आगे जो और अवतार हैं, जैसे महाविष्णु तक, तो वो सब जो हैं अवतार लेते हैं, धर्म को, धर्म की रक्षा करते हैं, इस सृष्टि का विनाश इत्यादि करते हैं और बाकी आखिरी में सारी की सारी सृष्टि को महाविष्णु अपने शरीर में फिर से अंदर कर लेते हैं। तो इस प्रकार बलराम जी भी अपनी लीलाओं में मस्त रहते हैं। और भगवान बलराम जी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पहले एक्सपेंशन है, तो पहले एक्सपेंशन होते हुए भी बलराम जी सबसे बड़े सेवक भी हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए उनकी सेवा करते हैं। कृष्ण लीला में कई बार देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी, उनकी जो है उनकी चरणों को भी दबाते हैं, उनकी मसाज भी करते हैं, उन्हें हवा भी करते हैं। और यही काम कई बार बलराम जी भी करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है मैं हूं तो बड़ा, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण ही तो मेरे क्या हैं, स्रोत हैं, स्वामी हैं, इसलिए वो सेवाएं भी करते हैं। इतना भी बताया गया है कि जो बलराम जी हैं, जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के ही रूप में आगे आकर महाविष्णु के रूप में आते हैं, तो जो शेष भी जो हैं वो किनको बनना पड़ता है, जिस पर शैया पे लेटे होते हैं, बलराम जी। एक जगह प्रपन्न प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि जो शेष हैं वो सारे सर्पों के अधिराज हैं, इसलिए भक्त लोग जो हैं कई बार बलराम जी से ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमें जो है हर प्रकार के इस प्रकार के नागों से रक्षा करें। अभी नागों से रक्षा का मतलब क्या है, क्योंकि नाग जो हैं या जो सांप होते हैं, इनके अंदर ईर्ष्या या द्वेष बहुत होता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ईर्ष्या और द्वेषी लोगों से रक्षा करें, है ना। नाग तो कहाँ मिलेंगे हमें, है ना। आजकल तो हर जगह सड़क, कंक्रीट, हर जगह है, तो सांप सूंप खत्म हो गए। हमारे रोहिणी मंदिर में तो फिर भी कभी कभी मिल जाते हैं सांप, क्योंकि वहाँ थोड़ा जंगल है, लेकिन इन जगहों पर सांप नहीं दिखते। लेकिन सांप जैसी वृत्ति के लोग तो पैंट शर्ट में और नाना प्रकार के वस्त्रों के आप उसमें मिलते हैं, जिनकी नेचर सांप जैसी है, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, है ना, और लोगों के प्रहार करना। तो ऐसी वृत्ति के लोगों से बचने के लिए भगवान जी कहते हैं बलराम जी की शरण में जाना चाहिए। और बलराम जी के पास एक हल भी रहता है, मालूम है। बलराम जी जो हैं वसुदेव के पुत्र हैं, जो कि उनके रोहिणी के घर में स्थानांतरित किए गए, और बताते हैं इनका संकर्षण नाम इसलिए है क्योंकि ये दोनों परिवारों को जोड़ते हैं। क्योंकि शूरसेन जो थे, उनकी एक पत्नी क्षत्रिय थी और एक पत्नी वैश्य परिवार से थी, है ना। तो जो नंद हैं, नंद महाराज, वो उनके पुत्र थे, इधर वसुदेव उनके पुत्र थे। और नंद के यहाँ, रोहिणी के यहाँ जब वसुदेव, सॉरी, ये बलराम जी आए, तो उन्होंने इन परिवारों को फिर से जोड़ा, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी बताते हैं यहाँ। तो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को संपन्न करने में उसमें सहयोग देते हैं। तो एक असुर हुए थे ताल वन में, आपने नाम सुना होगा, वृंदावन के वनों में एक ताल वन भी है, और ये एक ऐसा वन है जहाँ पर सुस्वादिष्ट जो है ताल वृक्ष पे फल लगा करते थे, जिसका रस जो है कहाँ कहाँ जाता था, इंद्र के पास भी जाता था और कंस के पास जाता था। मतलब कोई भी व्यक्ति वहां से गुजर नहीं सकता था, कोई एंटर नहीं कर सकता था, और जो भी जाता था तो वहां पर कुछ असुर थे जिन्होंने अपने आप को गधे के रूप में रखा हुआ था, उनका नाम था धेनु का असुर। उनकी सारी फौज जो थे असुरों की, वो भी किस रूप में थी, गधों के रूप में थी। और कोई भी अगर व्यक्ति वहां पहुंचता था तो उसको वो मानव भक्षी भी थे, खा लेते थे। और इस प्रकार एक बार क्या हुआ, उस तालवन में कृष्ण और बलराम, एक्चुअली जो उनके साथी थे ना ग्वालबाल, ये बोलते थे कि अरे तालवन चलते हैं, चलो तालवन देखते आते हैं, वहां पे मिलेंगे फल। तो ये लोग उनका ठीक है, इनको उकसाया कि ठीक है, वैसे तो माता मना करती थी खेलने जाओ गाय चराने जाओ लेकिन वहां मत जाना, कहां ताल मन कभी मत जाना, वहां एक भयंकर असुर रहता है। लेकिन बच्चों ने उकसाया, उनको लगा ठीक है हम तो सब कुछ हैं, जाने में क्या दिक्कत है, तो चले गए। 9 बजे के बाद आपको प्रयास करेंगे अगर वो मूवी है तो वो भी दिखाएंगे, साधु स्वरूपों हैं। तो सब चले गए अंदर और इस असुर ने जो है वहां पर इनको देखा और इनके पीछे इनके ऊपर अटैक किया, कृष्ण और बलराम के ऊपर। सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं उसके कथा में कि पहले कृष्ण पर अटैक करने की कोशिश करी क्योंकि बलराम जी को देख के वो घबरा सा गया, तो उनको लगा कि ये कुछ, क्योंकि बलराम जी की शक्ति और उनकी काया थोड़ी हैवी लगती थी देखने में। तो कृष्ण पर अटैक किया लेकिन कृष्ण जो है बलराम जी के आगे आ गए जब उन्हें अटैक करने आए, तो बलराम जी ने जो है बाद में धेनु का सुर को पकड़ा, उनको टांगों से पकड़ा और उसको ऐसे घुमाया और उसी ताल वन के वृक्षों के ऊपर फेंक दिया। और ऊपर जाते ही इस धनुकासुर के जो है प्राण निकल गए और जैसे ये मरा तो जो और असुर थे और जो गधे के रूप में असुर थे ये सब ने जो है बलराम जी पे और कृष्ण पर अटैक कर दिया। और फिर क्या था, जितने भी आते गए उन सब की टांगे पकड़ पकड़ के, पूंछ पकड़ पकड़ के कृष्ण और बलराम इन्हें जो है फेंकते रहे वृक्षों के ऊपर और ये वृक्षों पे जाते थे, गिरते थे और उनके प्राण वहीं निकल जाते थे। तो ये ताल वन था वास्तव में जिस प्रकार इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा था वृंदावन का पोर्शन, तो ये उस तरह की मेंटालिटी है जैसे कि जीव जब इस भौतिक संसार में आता है, इस भौतिक संसार में आने के बाद वो यहां पर अधिग्रहण करना चाहता है कि सब कुछ मेरा, और अधिग्रहण का उद्देश्य जो होता है कि जो मेरे पास मेरी पोजीशंस में है मैं उसमें से किसी को कुछ ना दूं, कोई उसमें से कुछ लेना, ये एक टेंडेंसी है जीवात्मा की। क्योंकि जब तक उसके अधिकार में कोई चीज रहेगी तभी तक उसका भोग कर सकता है बिना किसी रुकावट के। इसलिए इस संसार में हर जीव अधिक से अधिक चीजों को अधिग्रहण करना चाहता है। जैसे छोटे एग्जांपल समझते हैं, जैसे घरों के बाहर कार पार्किंग का एरिया होता है कि नहीं, तो सिलेक्टिव कार वो है कि हमारा इतना एरिया जी, इसके आगे कोई गाड़ी ना लगाए, है ना। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति लगा देता है, जैसे उस लेक्चर में बता रहे थे कि झगड़े हो जाते हैं, अगर कोई गलती टायर की हवा निकाल दे तो यानी कि गोली तक मार देते लोग, इतना ज्यादा कला क्लेश। क्यों चाहता वो उतना एरिया मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर के आगे है, ये मेरा एरिया है ना, तो मैं उसको भोग सकूं, मैं जब कभी आऊं तो मुझे जगह खाली मिलनी चाहिए, मैं जहां पर भी गाड़ी लगाऊं मुझे भी। ऐसे ही हर चीज में, खाने तक की चीजों में, पहनने तक की चीजों में और घूमने तक की चीजों में, अपने घर में सोने तक की जगह में, जो मेरा पलंग हो मेरी जगह बस, इसमें कोई आना जाए, इस जगह पर कोई ना सोने। तो इस प्रकार की मेंटालिटी लोगों की बनती है धीरे धीरे, और फिर लोभ के कारण व्यक्ति हर चीज को चाहता है कि मेरे पास रहे, सो दैट कि ये किसी और की कामना है, ये केवल मेरे भोग के कारण मेरे ही इस्तेमाल में है। तो इसी प्रकार जो ये भोग मेंटालिटी जब बढ़ती है तो इसी प्रकार होती है। हमने बताया ना एक बार, पृथ्वी जो है जिस धरती पे हम रहते हैं ये खूब विलाप कर रही थी, क्यों, क्योंकि यहां पर असुर बढ़ गए थे और असुर की मेंटालिटी क्या होती है, ये सब जगह मेरी, इसलिए एक दूसरे पर अटैक करते हैं, तो पाप बढ़ जाता है, इसलिए इनको जाना पड़ा ब्रह्मा जी के पास और भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि आप अवतरित होइए। यही पृथ्वी लोगों पे हंस भी रही है, कब, जब वो ये देखती है कि ये जो असुर लोग आए हैं, ये जो ये राजा लोग आए हैं, ये भूमि अधिग्रहण करने के लिए, राज्यों को अपने कब्जे में लेने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का जहां तक राज्य हुआ वो बेरोक टोक वहां जा सकता है, इसलिए हर व्यक्ति अपना जगह का विस्तार करता है, मकान का विस्तार करता है ना, घर का प्लॉट का विस्तार करता है, क्यों, क्योंकि उसको एंजॉय कर सके। तो इस प्रकार पृथ्वी रानी जो है हंस रही हैं उन लोगों पर जो अधिक से अधिक समय अपना लोगों को मारकर उस जगहों का अपने अधिकरण में करना चाहते हैं। हंस क्यों रही हैं, तो वो कहती हैं कि तुम जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो, तुमसे पहले कई राजा आए, उन्होंने भी एक दूसरे का वध किया इसी जमीन के लिए, वो भी चले गए, समय इतना प्रबल है, इतना बलवान है कि ये रुकता नहीं है। आप अपने घर की घड़ियां रोक सकते हो, हाथ की घड़ी रोक सकते हो, लेकिन सूर्य को अस्त होने से नहीं रोक सकते। तो दिन ब दिन काल जो है सब कुछ ग्रहण कर रहा है। उद्यन अस्तन चयन नस्सो, सूर्य के उदय होने से और अस्त होने से हमारे जीवन की जो है का समय जो है क्षीण होता जा रहा है। तो इस प्रकार वो हंस रही है उन पे कि तुम लड़ रहे हो, तुम भी चले जाओगे, आने वाले समय में और आएंगे, वो भी लड़ेंगे, सारे कोर्ट केसेस इसी पे हैं आजकल, और जब से रेट बढ़े हैं तो और ज्यादा बढ़ गए हैं, है ना। प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ने से पहले तो लोग, किसान लोग मंदिर वालों को बोलते थे, प्रभु जी लो ये 10 से 20 बीघा जमीन आपके लिए, मंदिर बनाइए। दान में दे देते लोग, आपके लिए 10 एकड़, आपके लिए 100 एकड़ इधर दे दी, 500 एकड़ इधर दे दी। अभी वो कह रहे हैं किस किस को दी थी बताओ, कहाँ है वो कागज, मेरे को वापिस दो। कारण कि वो जो लालच है, वो जैसे हमारा जो मंदिर है, आज हम जिस मंदिर में बैठे हैं, इससे पहले भी एक मंदिर था ये पंजाबी बाग का, वो भी दान में दी गई जगह थी, लेकिन जब उसके भी रेट बढ़े तो लोगों ने कहा भाई हमारा वापस दे दो जगह, तो हम लोगों को फिर ये जगह लेनी पड़ी। तो कहने का क्या मतलब है, ये लालच जो है इसी प्रकार का है। इसी तरह धेनु का सुर और जो कंस है वो सब चाहते थे कि जगह हमारी रहे, और भगवान ने जो है एक अच्छा सबक सिखाकर उनको वध कर दिया। इस प्रकार कई लीलाओं में बलराम जी ने जो है इस प्रकार वध किया, क्योंकि कृष्ण लीला में कृष्ण ही प्रोमिनेंट रहे हैं, भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए बलराम जी सहायक के रूप में आए। प्रभुपाद जी लगते हैं एडिशनल हीरो, जैसे कई बार फिल्मों में होता है ना, एक स्टार हीरो मेन और फिर एक को स्टार होता है इसके, तो बलराम जी पूरी लीला में को स्टार का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा और भगवान श्री कृष्ण का क्या संबंध है। इसलिए कुछ जगहों पर भगवान ने बलराम जी से भी असुरों के वध कराए हैं, पर लंबासुर को भी मारा उन्होंने। ऐसा नहीं था कि जो जिन राक्षसों का वध कृष्ण ने किया बलराम जी नहीं मार सकते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन क्योंकि कृष्ण पूर्ण भगवान है और इस समय उन्हीं की लीला का समय है, तो भगवान ने उनको पूरा मौका दिया वध करने का। हाँ, एक जगह और हुआ ऐसा, जब ब्रह्मा जी को यह पता चला कि भगवान अवतार ले चुके हैं और देवताओं ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो उनको लगा नहीं नहीं एक छोटा सा बालक, ये तो कुछ जादू तंत्र इत्यादि जानता होगा, कहते नहीं नहीं इसने अगासुर का भी वध कर दिया। अच्छा, तो क्या किया ब्रह्मा जी ने, भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बालों को, एक्चुअली क्या था कि कृष्ण रोज गाय चराने जाते थे और बलराम जी हमेशा साथ में होते थे, लेकिन उस दिन भगवान बलराम जी का क्या था, जन्मदिन था, तो उनकी मां ने उनको घर में पूजा इत्यादि की चीजों के लिए रोक लिया। तो कृष्ण अपने दूसरे ग्वाल बालों के साथ, गायों के बछड़ों के साथ चले गए वन में, और इधर से ब्रह्मा जी भी परीक्षा लेना चाह रहे थे कि भगवान है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने ऐसा जादू बिछाया कि सारे गोपाल जितने थे और बछड़े थे उन सबको हर लिया और जाके कैद कर लिया अपने पास, और जब वापस आना था तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्हें पता तो सब कुछ था, बट स्टिल उन्होंने अपना विस्तार किया और सारे ग्वाल और बछड़ों के रूप में भगवान ने अपना विस्तार कर लिया। लगभग एक साल तक भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही रखा सब कुछ, बलराम जी को भी पता नहीं चला एक साल तक। उन्हें यह तो लगता था कि क्या हो रहा है कि छोटे छोटे बछड़े अपनी माओं का, गाय का जब दूध पी रहे हैं तो जो बड़ी गायें हैं उनको उतना ही आनंद आ रहा है जिस प्रकार कृष्ण डायरेक्ट थन पकड़ के जो है दूध पीते थे, और दूसरी माएं माताएं अपने बच्चों को देखकर इतना प्रेम कर रही हैं उनके स्तनों से भी स्वतः ही जिस प्रकार कृष्ण को देखकर उनके स्तनों से दूध आता था, इसी प्रकार अब हर माता के स्तनों से दूध आ रहा है अपने पुत्रों को देखकर, और वो बच्चे भी एक अलग प्रकार की चमक है उनके अंदर, एक अलग प्रकार का ऐश्वर्य है उनके अंदर। लगभग एक साल तक ऐसा रहा। ब्रह्मा जी वापिस आए, लेकिन बलराम जी को एक साल के बाद ही पता चला कि क्या है जो कृष्ण से पूछा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बलराम जान नहीं सकते थे, बलराम भी जान सकते थे सब कुछ, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कृष्ण हैं और पर्टिकुलर कई लीलाओं में अगर कृष्ण आनंद लेना चाहते हैं जिस प्रकार से, या जैसे सारी गोपियां चाहती थी कि कृष्ण हमारे स्तनों का भी क्या करें, पान करें, और गायें भी चाहती थी कि काश कि हमारे बछड़ों की तरह कृष्ण भी हमारे स्तनों का पान करते, धरती माता भी चाहती थी कि जो है कृष्ण जो है हमारे पर हर जगह चरण रखें, तो भगवान ने भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए इस प्रकार कई ग्वाल बालों के रूप में अवतार लिया और बछड़ों के रूप में भी लिया। इधर बलराम जी को पता चला, वास्तव में तो बलराम जी सब जानते हैं। बलराम जी बताते हैं भागवतम में कि बलराम जी क्योंकि शेष हैं, उनके 1000 हुड्स हैं, फन हैं, और उनसे वो सदैव भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान करते रहते हैं, लेकिन आज तक कर नहीं पाए, इतने गुण हैं कृष्ण के अंदर। कर लेते हैं लेकिन क्योंकि भगवान के गुण दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं, इसलिए फिर उनको और गुणगान, उनकी और लीलाओं का जो है गुणगान करना पड़ता है। तो इस प्रकार ये कॉम्पिटिशन चलता रहता है। लेकिन इस लीला में बलदेव जी को 1 साल के बाद पता चला। तो इस प्रकार बलदेव जी, बलराम जी सब कुछ जानते हुए भी अनजान हैं, और कृष्ण की ऐसी योग माया जो कि उनके परम पहले एक्सपेंशन बलराम जी को भी एक समय के लिए मोहित कर दिया, क्योंकि कई बार क्योंकि बलराम जी तो स्वयं हमने बताया सारे विस्तारों को और सारी चीजों के अधिष्ठाता वही हैं, लेकिन उनको भी इन सब चीजों से पता चलता है कि कृष्ण सदैव, चाहे मैं उनसे बड़ा भाई भी हूं, फिर भी क्या है, परम भगवान है इन लीलाओं के द्वारा। तो इस प्रकार ये बलराम जी की सुंदर लीलाएं जो हैं, बताया जाता है कि जब हम लोग बलराम जी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के साथ अगर पुरुष रूप में हैं, तो यही बलराम जी अनंग मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी को भी सर्व करती हैं, कृष्ण को भी सर्व करती हैं। और यही बलराम जी जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो नित्यानंद रूप के रूप में आते हैं, और यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण की अर्थात चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का ग्लोरीफाई करते हैं। और भक्तगण अपने भजनों में बताते हैं कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे पहले नित्यानंद जी के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा, तब जाके वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। उसी तरह बलराम जी भी भक्तों को भक्ति की स्ट्रेंथ देते हैं, चैत गुरु के रूप में हृदय में भी हैं, है ना, और इस धराधाम में गुरु के रूप में भी हैं, जो कि भक्तों को गाइड करते हैं और उनको आध्यात्मिक शक्ति देते हैं जिससे कि वो राधा कृष्ण की लीलाओं में जा सके। तो हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा।